कंटिन्यू करेंगे पहले पारे को सूरत बकरा आयत नंबर 94 से। अब यहाँ से आगे इनके दिलों में छुपे हुए खौफ का तस्करा है, क्या आयत 94, कुल इन कानत लकुमुद दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन नास। इनसे कहो अगर वाकई अल्लाह के नज़दीक आखरत का घर तमाम इंसानों को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे ही लिए मखसूस है तब तो तुम्हें चाहिए कि मौत की तमन्ना करो अगर तुम अपने इस ख्याल में सच्चे हो। यकीन जानो कि ये कभी इसकी तमन्ना न करेंगे इसलिए कि अपने हाथों से जो कुछ कमा कर उन्होंने वहाँ भेजा है इसका तकाजा यही है और वहाँ जाने की ये तमन्ना न करें। अल्लाह इन जालिमों के हाल से खूब वाकिफ है। हाल क्या है इनका? तुम इन्हें सबसे बढ़कर जीने का हरीस पाओगे हत्ता कि ये इस मामले में मुशरिकों से भी बड़े हुए हैं। इनमें से एक एक शख्स ये चाहता है कि किसी तरह हज़ार बरस जिए हालांकि लंबी उम्र बहर हाल इसे अजाब से तो दूर नहीं फेंक सकती। जैसे कुछ आमाल ये कर रहे हैं अल्लाह तो इनको देख ही रहा है। यहाँ से आप देखिए कि अल्लाह ताला ने एक बात बता दी कि जिसने तैयारी की होती है वो मरने से कभी नहीं घबराता। यहूद के दावों के नज़र में हम सबको अपना भी जायज़ा लेना चाहिए कि आज हम मौत के लफ्ज़ से खौफजदा क्यों होते हैं। अगर एक इंसान अल्लाह से मिलने से मोहब्बत करे और वक्त पे उसकी तैयारी करे तो उसका हाल बिल्कुल उस मेज़बान की तरह जो अपने मेहमान की मोहब्बत में वक्त से पहले ही हर चीज़ तैयार कर लेता है और फिर उसकी नज़रें घड़ी पर लग जाती हैं। एक मोमिन सिर्फ बुढ़ापे में ही नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर घड़ी देखता है कि कब वो मुलाकात की घड़ी हो कि या तुहन नफ्सुल मुतमईना ए इत्मीनान वाली रूह चल अपने रब की तरफ। करना क्या है? मौत से डरना नहीं मौत के बाद की तैयारी करनी है। इनसे कहो जो कोई जिब्रील से दावत रखता हो यानी दुश्मनी इसे मालूम होना चाहिए कि जिब्रील ने अल्लाह की इज़्ज़त से ये कुरान तुम्हारे कल पर नाजिल किया है जो पहले आई हुई किताबों की तस्दीक और तायद करता है और ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और कामयाबी की बिशारत बनकर आया है। जिन लोगों के दिल में हिदायत की तलब नहीं होती ना तो जब उनको हिदायत की दावत दी जाए ना तो वो कुछ सवाल करते हैं, कौन पढ़ा रहा है, कौन है ये लोग, इनका मसलक क्या है और ये किस जमात से हैं और किस गिरोह से हैं। यही मसला कुछ मक्का वालों का था। जब अल्लाह के नबी बार बार इनको बुलाते थे तो दिल तो आता चाहता नहीं था क्योंकि नफ्स पे पाबंदी थी। तो एक दिन कहने लगे अच्छा बताएं कि आपके पास वही कौन लेकर आता है? कहा जिब्राइल। ओ सॉरी जिब्राइल से तुम्हारी पुरानी दुश्मनी है क्योंकि वो बड़ी सख्त शरीयत लेके आता था और वो पिछली कौमों पर अजाब लाता था। तो जिब्राइल का क्या गया आपकी बात ना मान के? यहाँ एक असूल बना लीजिए कभी भी बात कहने वाले को बुनियाद बनाकर ना आए और ना छोड़ें। बस दफ़ा इंसान अपनी हिदायत के लिए कहीं आता है तो कभी मैनेजमेंट के मसलों को लेकर अपनी हिदायत से पीछे हो जाता है, कभी किसी जगह से किसी नाम से किसी रंग से किसी का कुछ नहीं जाएगा। आप डॉक्टर के पास जाते हैं किस चीज़ से आपको सरोकार है कि मुझे यहाँ आके सेहत मिलती है कि नहीं, दवा मिलती है कि नहीं, मेरा इलाज होता है कि नहीं? आपकी बला से डॉक्टर की दुकान पे और क्या हो रहा है, कौन नहीं आ रहा, वहाँ कितने मरीज़ हैं, कितने डॉक्टर की बात को मान रहे हैं नहीं मान रहे। वो तो डॉक्टर है, वो तो आपकी का इलाज करना चाहता है। लेकिन जब लोग पैगाम से भड़कर पैगाम देने और पैगाम वाली जगहों पे नज़रें रखते हैं तो याद रखिए उनका नसीब वही है जो मदीना के यहूद का था। अल्लाह ताला हम सबको उससे बचा कर रखे। और उन्होंने तो सिर्फ जिब्राइल से दुश्मनी की बात की थी ना, अल्लाह को तो इतना गुस्सा आया इस बात पे कहा अगर जिब्राइल से इनकी अदावत का सबब यही है तो कह दो कि जो अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसके रसूलों और जिब्राइल और मीकाईल के दुश्मन हैं अल्लाह इन काफिरों का दुश्मन है। यानी अल्लाह कहता है तुम मेरे जिब्राइल से दुश्मनी करते हो तो फिर मैं भी तुम्हारा दुश्मन हूँ। हदीस में आता है कि जब किसी अल्लाह के वली से कोई दुश्मनी करता है यानी राह जाता उसे बैर मोल ले लेता है और वो होता नहीं वैसा जैसा उसको कोई समझता है तो फिर अल्लाह को वो अपने मुकाबले पे बुला लेता है। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि हम दीन वालों की कदर कर सकें और उनकी दुश्मनी की बजाय हम अपनी इसलाह की फ़िक्र करें। अगर किसी की भी कोई बात हमें बुरी लगती है तो ये सोचें कि वो कह सच रहा है कि झूठ, अगर सच है तो मानना पड़ेगा, झूठ है तो परवाह छोड़ दें। फिर अगली आयतों में आप देखिए कि अल्लाह ताला नबी सल्लम के नाते से हम सबको बताते हैं हमने तुम्हारी तरफ ऐसी आयत नाजिल की हैं जो साफ साफ हक का इजहार करने वाली हैं और इनकी पैरवी से सिर्फ वही लोग इनकार करते हैं जो फासिक हैं। खुद से पूछिए, चौथा गिरोह है फासिक बेहया गिरोह गुनाह करके छुपाने की बजाय, रोने की बजाय, नदामत के आंसुओं की बजाय दूसरों को खुद अपनी बुराइयों की खबरें देने वाले, अल्लाह कहते हैं ये नसीब की बात है। आज भी देखिए हम सबके हाथों में कुरान है, हम इस क्लासरूम में बैठे हुए, हम पे भी आयतें फिट होती हैं। अगर इस पढ़े हुए पे अमल नहीं करेंगे फासिक बन जाएंगे, और फासिक का एक इंजाम है कि वो हक के साथ ज़्यादा देर नहीं चलता। क्या हमेशा ऐसा ही नहीं होता रहा कि जब उन्होंने कोई अहद किया तो इनमें से एक ना एक गिरोह ने इसे ज़रूर ही बालाए ताक रख दिया, यानी उस पर अमल ना किया। बल्कि इनमें से अक्सर ऐसे हैं जो सच्चे दिल से ईमान नहीं लाते, और जब इनके पास अल्लाह की तरफ से कोई रसूल इस किताब की तस्दीक और तायद करता हुआ आया जो इनके यहाँ पहले से मौजूद थी, तो इन अहले किताब में से एक गिरोह ने किताबुल्लाह को इस तरह पसे पुश डाल दिया गोया कि वो इसको जानते ही नहीं थे, लीस्ट प्रायोरिटी बना दिया इस किताब को। ये नुक्ता नोट करने के काबिल है, कौमें जब किताबें हिदायत को पसे पुश डाल देती हैं, पांव तले रोंद लेती हैं, अपनी अमली ज़िंदगी में अमल कुछ होता है, किताब कुछ और दिखती है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कैसे लोगों को पिला मोहला किसी ऐसी चीज़ के पीछे लगना पड़ता है जो शैतान की होगी। यही उनके साथ हुआ, कैसे जब अल्लाह की किताब को पीछे डाला तो लगे इन चीज़ों की पैरवी करने जो शयातीन सुलेमान की सल्तनत का नाम लेकर पेश किया करते थे। ये नुक्ता नोट कीजिए, हिदायत को छोड़ने के बाद बंदा फिर बेहिदायता नहीं रहता, गुमराह हो जाता। देखिए ये जुमला, आप कहते नहीं सॉरी मैं ये रोड नहीं ले रही, ना लीजिए, आपकी मर्ज़ी है, वहीं खड़े रहें, आपकी मर्ज़ी घर चले जाएं, लेकिन हिदायत की रोड छोड़ने का कभी भी ये अल्टीमेट रिज़ल्ट नहीं है कि आप वहीं खड़े रहें, डेफिनेटली फिर आप गुमराह होंगे। जैसे कोई स्टीप पर चढ़ रहा हो, ऐसी होती है ना जैसे ढलवान, या तो आप गाड़ी को ऊपर चलाएंगे या फिर गाड़ी पीछे लुढ़केगी, कभी गाड़ी ऐसे खड़ी नहीं होती इल्ला ये कि आपको बहुत बड़े इंतजाम कर लें। तो अल्लाह ताला उनकी बात करके हमें भी बताता है कि वो शैतानी चीज़ों के पीछे लग गए। आज हमारी उम्मत कहाँ लगी हुई है, कितने हाथों में कुरान है और कितने हाथों में सिफली इल्म है, यहाँ जादू टोने की बातें आ रही हैं। कुरान पढ़ते नहीं ताकि दिल के शैतान भागें, मुर्ता दिल जिंदा हो, रूह की बीमारियाँ दूर हों, और फिर जब ज़रा तबीयत पे बोझ होता है तो फिर भागते हैं ऐसे सिफली इल्म करने के लिए, करवाने के लिए। तो अल्लाह ताला कहते हैं हालांकि सुलेमान ने कभी कुफर नहीं किया था, वो तो काफिर थे, कुफर के मुर्तकिब तो वो शयातीन थे जो लोगों को जादूगरी की तालीम देते थे, वो पीछे पड़े उस चीज़ के जो बाबुल में दो फरिश्तों हारूत और मारूत पर नाजिल की गई थी। हालांकि वो फरिश्ते जब भी किसी को इसकी तालीम देते थे तो पहले साफ तौर पर आगाह कर देते थे कि देखो हम महज एक आजमाइश हैं, तुम कुफर में मुब्तला ना होना। फिर भी ये लोग उनसे वो चीज़ें सीखते जिससे शोहर और बीवी में जुदाई डाल दें। जादूगर का सबसे बड़ा हथियार शोहर और बीवी में जुदाई है। रिवायात में आता है कि शैतान रात को पानी पर अपना तख्त लगा के बैठता है और चारों तरफ से उसके चीले उसको खबरें देते हैं, रिपोर्टिंग होती है कि आज के दिन में क्या किया। हर एक आके अपनी कारस्तानी सुनाता है, कोई कहता चोरी करा दी, कोई कहता कत्ल करा दिया, वो सबको हल्का सा अप्रिशिएट करके खामोश होता है। इतने में एक शैतान आता है और कहता है आज मैंने शोहर और बीवी में झगड़ा करवा दिया, जुदाई की नौबत आ गई, तो शैतान अपने तख्त से उतर के उसको गले से लगाता है। बाज़ रिवायत में आता है कि उसको कहता है अंत बनी, तू मेरा बेटा। बाज़ जगाता है वो कहता है असल काम तो तू करके आया है। इतना जादूगरों को इस चीज़ से, क्योंकि जिस माशरे में घरों में फितना फसाद हो जाएगा वहाँ दीन का काम कैसे होगा। यहाँ मैं आपको सुफियान सॉरी का एक कॉल नकल करवाऊँगी, वो कहते हैं कि दुनिया का जादू हारूत मारूत के जादू से ज़्यादा सख्त है। क्यों? कि हारूत मारूत का जादू तो शोहर और बीवी के बीच में जुदाई करवाता था, और दुनिया का जादू खालिक को मखलूक से, यानी मखलूक को खालिक से काट देता है। दुनिया का जादू बंदे को रब से काट देता है। है ना बंदगी की डोरियां कटी हुई आज। अल्लाह हमारी दोबारा जोड़ दे इस साल के दौरे कुरान को सुनने के दौरान ही। जाहिर था कि अल्लाह के हुक्म के बग़ैर वो इस ज़रिए से किसी को कोई ज़रर ना पहुँचा सकते थे, मगर इसके बावजूद वो ऐसी चीज़ें सीखते थे जो ख़ुद इनके लिए नफ़ा बख्श नहीं बल्कि नुकसानदेह थीं, और इन्हें खूब मालूम था कि जो इस चीज़ का ख़रीदार बना इसके लिए आख़रत में कोई हिस्सा नहीं। इस हिस्से को नोट करें और अपनी उन बहनों दोस्तों को बताएं जो जादू टूनों में मगन रहती हैं, ना तो आप जादू कर सकते हैं, ना करवा सकते हैं, ना उसका तोड़ कर सकते हैं, का जो करेगा उसका आख़रत में कोई हिस्सा नहीं। कितनी बुरी मता थी जिसके बदले में उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला, काश के इनको मालूम होता ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے اس کا جو بدلہ ملتا وہ اس سے بہت بہتر تھا، کاش انہیں اس کی خبر ہوتی. یہاں آپ دیکھیے کہ جادو کی مختلف طرح سے بات ہوئی. تو جادو کیا ہے؟ مشرک قوموں کا شغل ہے، مسلمانوں میں یہ چیز نہیں تھی. مکہ میں کبھی بھی آپ نے یہ بات نہیں سنی ہوگی اللہ کے نبی کے صحابہ کے ذریعے. ہاں مدینہ میں یہود مدینہ کا جادو معروف تھا، کتاب اللہ کو پیچھے ڈالا تو فکشن کے پیچھے لگ گئے. اللہ تعالیٰ کبھی ویکیوم نہیں رکھتا ہماری زندگی میں. پھر آج آپ دیکھیے کہ مسلمان ملکوں میں رہتے ہوئے اخباروں میں اگر ایسے اشتہار ہوں کہ نہ کوئی معاوضہ نہ کوئی ڈیمانڈ، کام پورا ہونے پر دیں، کالی قوتوں کے ماہر شکتی فلاں فلاں اپنی خوشی سے جو دیں، جو اپنے یہ ایک اشتہار پڑھ رہی ہیں آپ کے سامنے، جو مولویوں کے ہاتھوں لٹ چکے ہیں وہ ہمارے پاس آئیں تو ان کے دل کی مراد پوری ہوگی، اپنی خوشی سے بات میں جو منہ میٹھا کرا دیں انسٹنٹ فائدہ ہوگا. یہ مسلمان ملکوں کے اشتہار ہے. دیکھیے جادو کرنے والا اپنی بگڑی تو بنا نہیں سکا، خود تو سارا دن مٹی اور خاک کھاتا ہے، دوسروں کی کیسے بنائے گا. اور آپ کو تک کہ جادو کرنے کے لیے گندا خون استعمال کرتے ہیں، قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں، ٹوائلٹس میں قرآن پاک کے صفوں کو گراتے ہیں، اس کو زمین پہ رکھ کے اس کے اوپر ناچتے ہیں، پیریڈس والے بلڈ جو ہوتا ہے اس کپڑے کے پیریڈس کے بلڈ کے ساتھ قرآن کی آیتیں لکھتے ہیں. یہ کچھ نہ کریں تو شیطان ان سے خوش کیسے ہوں گے؟ اور آپ کو تک کہ جادو کبیرہ گناہ ہے. سات کبیرہ گناہوں سے اللہ کے نبی نے بچنے کا حکم دیا تو اس میں جادو آتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج بھی مسلمانوں میں نقش سلیمانی کتنا مشہور ہے. آپ دیکھیں حضرت سلیمان جادوگر نہیں تھے، لیکن آج کے دور میں بھی ان کے نام پر یہ الزام لگا ہوا ہے. تو جب مسلمان کتابیں ہدایت سے دور رہیں گے تو کرشموں، ٹوٹکوں، وظیفوں، پالوں اور نہ جانے کن کن چیزوں کے پیچھے پڑیں گے. بچے کی شادی نہیں ہو رہی، جادو کر دیا. بیٹی بس نہیں رہی، جادو کر دیا. یہ نہیں پتا کہ معیاری ٹھیک نہیں، اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتے ہیں رشتوں کے وقت پہ ہم لوگ. تو لہٰذا سوچ بدلنے کی ضرورت ہے کہ اس کے بعد انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے. پھر اس کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت ادب سکھایا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ دین کی محفلوں کا روپ کیسا ہونا چاہیے. دعا کیجئے کہ اللہ ایسا کر دے، کیونکہ بعض دفعہ انسان دین کے نام پر اتنا زیادہ ریلیکس ہو جاتا ہے کہ کسی قسم کی پابندی کو برداشت نہیں کرتا. اور اسی وجہ سے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جہاں بھی ہمارے دینی حلقے ہوتے ہیں دل میں بات نہیں اترتی، بیچ میں بچے رو رہے ہیں، بیچ میں کوئی کھا رہا ہے، کوئی پاؤں کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی دیوار کے ساتھ ہے، کوئی کچھ ہے. تو یاد رکھیے کہ جہاں کا ماحول ہمیں ہی اچھا نہ لگے وہاں رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ اللہ کے نبی کی محفلوں میں کیسے ہوتا تھا؟ وہاں کسی نے خلل ڈالنے کی کوشش کی تو کیا احکامات آئے؟ آیت 104، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہا کرو، اور بات کو پہلے ہی توجہ سے سنو. یعنی کہنے کی دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. رہ گئے وہ لوگ جو ایسی محفلوں کا رنگ روپ خراب کرتے ہیں، تو بتا دو کہ بل الکافرین عذاب الیم، اور نہ شکروں کے لیے کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے. یا کون ہے کافر؟ توہین رسالت کے مرتکب. یہود اور کچھ منافق اللہ کے نبی کی محفلوں میں آ تو جاتے تھے لیکن وہاں آ کے رکھنے ڈالتے، شوشے چھوڑتے، جان کے ایسے فتنے اٹھاتے، ایسے سوال اٹھاتے، ایسی باتیں کرتے جس سے دوسروں کا دل ٹوٹے، خام خام میں لوگوں کو مشکوک کرتے. کوئی ایک ایسا مسئلہ، آج کے دور میں ایسا ہوتا ہے کبھی ہمارے ساتھ بھی؟ کوئی ایک مسئلہ جس کے نہ سر نہ پاؤں نہ ادھر نہ ادھر، اس کو لے کے سسٹرز بیٹھ جائیں گی تو میں جواب نہیں دیتی، میں ان کو کہتی ہوں کہ بعد میں بات کر لیں گے. بعد میں بات کریں تو وہ بات کچھ اور ہی ہوتی ہے. پھر بعد میں کہتے ہیں جی یہ ہے وہ، یعنی شوشے پھیلا دیتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ دین کی محفل کا حسن کیا ہے کہ بات کو غور سے سنا جائے، اللہ سے ڈرتے ہوئے سنیں. اللہ کی بات ہے، جائیں اس جگہ پہ جہاں سے آپ کو یقین ہو کہ دین کی بات ہوگی. آپ دوسروں کو صرف تسلیاں دینے اور صرف لوگوں کو اس طرح کی باتیں سنانے والی جگہوں پہ جائیں گے، مزہ تو آپ کو بہت آئے گا، ہر چیز جائز کروا کے اٹھیں گے اس محفل سے. لیکن یاد رکھیے کہ دین اللہ کا ہے. نبی کو بھی کہہ دیا کہ آپ ان کی باتوں میں آ کر اللہ کے دین میں کوئی چینج نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد ایک اور شوشہ یہود نے چھوڑا تھا. یہ سارے شوشے ہیں، شوشہ سمجھتے ہیں، پرابلمس. اللہ کے نبی کی محفلوں میں کیوں لوگ آتے ہیں؟ کیوں وہاں کے مزہ آتے ہیں؟ وہاں کا ڈسپلن کیوں اچھا ہے؟ ڈسپلن کو خراب کرنے والے لوگ تھے. پہلے رائنا کا ایشو چھیڑا، اب ایک اور ایشو چھیڑ دیا. یہ کبھی کوئی رول بناتے ہیں، کبھی کوئی بنا دیتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کیونکہ قرآن تدریج کے ساتھ اتر رہا تھا. شروع میں اللہ کے نبی کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا کہ جب لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تو ریلیکس رکھتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ الحمدللہ یہی چیز ہم نے سیرت سے سیکھی کہ جب بھی کوئی کورس شروع کیا جاتا ہے، جیسے اب یہ دورہ قرآن ہے، یہ بھی ایک کورس ہے الحمدللہ، और मैं सब ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं जो, मैं उन सब के लिए एक छोटी सी बात शेयर करूं कि आज मैंने आप लोगों की रोल कॉल सुनी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सुन रहे थे, तो मैंने सब के नाम जो भी ये ले रही थी सिस्टर आयशा, तो मैंने उन सब के एंड पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहा, 300 के करीब लोगों के नाम थे। और मैं ये सोच रही थी कि इन सब को अल्लाह ताला ने रोज़ इनके नाम आ गए हैं, तो अगर हम अल्लाह की इस नेमत पे शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमारा नाम कुरान के साथ जोड़ा, तो बहुत सारी फिर मैंने आपको उस वक्त दुआएं भी दी। तो आप देखिए, आपको तो नहीं पता ना मैंने दुआएं दी हैं, फरिश्ते पता नहीं कितनी दुआएं देते होंगे, अल्लाह कितना खुश होता है। डिसिप्लिन को कायम करने वाले, याद रखिए, ज़मीन व आसमान में छा जाते हैं। तो ऐसे लोग जो हर चीज़ को फॉलो करते हैं, वो दिल की गहराइयों से दुआएं लेते हैं, अल्लाह ताला उनको ये सारी दुआएं लगा दे। तो करते क्या थे, कहते थे ये कुरान बदलता क्यों रहता है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ, वक्त की ज़रूरत होती है, कभी एक चीज़ की ज़रूरत होती है कभी दूसरी की होती है। दीन एक जामे चीज़ नहीं है, बच्चा पहले थोड़ी चीज़ खाता है, फिर बड़ा होता है तो ज़्यादा चीज़ खा लेता है। अब आप कहें कि ये तो मुनाफ़त हो गई कि आपका बच्चा पहले सीरियल खाता था, अब आप उसको रोटी दे रहे हैं, नहीं, आप ख़ुद देखते हैं वक्त के साथ साथ ज़िंदगी में बहुत सारी चेंजेस आती हैं। तो दीन भी बिल्कुल इसी ह्यूमन साइकिक के तहत नाजिल किया गया। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, मान अनसख मिन आयतिन अव नुनसिख नाति बिगैर मिनहा हो मिसलिहा। ये लोग जिन्होंने दावत हक को कबूल करने से इनकार कर दिया है, ख्वाह अहले किताब में से हों या मुशरिक हों, हर किसी से पसंद नहीं करते कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर कोई भलाई नाजिल हो, मगर अल्लाह जिसको चाहता है अपनी रहमत के लिए चुन लेता है और वो बड़ा फजल फरमाने वाला है। जलते थे, कुड़ते थे, अल्लाह के नबी पे फजल क्यों है, अल्लाह के नबी पे इतनी रहमत क्यों है? तो अल्लाह कहते हैं तुम्हारे जलने कुड़ने से उनकी रहमत पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा अपना ही रंग काला हो जाएगा, तुम खुद ही दुखी हो जाओगे। अब हिकमत बताई जा रही है, हम अपनी जगह जिस शायद को मनसूख कर देते हैं या भुला देते हैं उसकी जगह इससे बेहतर लाते हैं, या कम अज़ कम वैसी ही। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है? क्या तुम्हें खबर नहीं कि ज़मीन व आसमान की फरमा रवाई अल्लाह ही के लिए, और इसके सिवा कोई तुम्हारी खबरगिरी करने और तुम्हारी मदद करने वाला नहीं? एक और शोशा, नबी के पास आके उल्टे सीधे सवाल पूछते थे ताकि इनका वहाबी होना पता चल जाए। अम तुरीदून अन तसलु रसूलकुम, क्या तुम अपने रसूल से इस किस्म के सवालात और मुतालबे करना चाहते हो जैसे इससे पहले मूसा से किए जा चुके हैं? हालांकि जिस शख्स ने ईमान की रविश को कुफर की रविश से बदल दिया, वो राह रास्त से भटक गया। अहले किताब में से अक्सर लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह तुम्हें ईमान से फेर कर फिर कुफर की तरफ ले जाएं, अगरचे हक इन पर जाहिर हो चुका है, मगर अपने नफ्स के हसद की बिना पर तुम्हारे लिए इनकी ये ख्वाहिश है। इसके जवाब में तुम अफ़ो दरगुजर से काम लो, यहाँ तक कि अल्लाह खुद ही अपना फैसला नाफिज कर दे। मुतमईन रहो किस बात पर कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर, कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। करो क्या, अभी इतने शोशे फैलाते थे, देखिए जिसको मानना नहीं होता ना, ना मानने के 100 बहाने ढूंढता है, वो कोई उज़र ढूंढ रहा होता है कि जो पेश करके मैं मुतमईन हो जाऊं कि मेरे किसी बात को ना सुनने में ये हिकमत है। अल्लाह कहता है तुम्हें क्या मिला, तुमने नबी से उल्टे सीधे सवाल किए, सवालों से दीन समझ नहीं आता। क्यों ए सेशन से अगर दीन आता तो ये यूनिवर्सिटियाँ बंद हो जाती, सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेती। याद रखिए दीन का एक मिजाज है, इल्म सीखो, एक मौजू पे पूरी समझो। सिस्टर्स कभी कोई बात करें तो कहती हैं हमने तो ये बात कभी नहीं सुनी, कभी नहीं पढ़ी। तो फिर मैं उनसे पूछी, सिस्टर्स आपने कौन सी बुक पढ़ी है? फिर थोड़ी होती हैं, काफ़ी किताबें हमारे घर में। फिर मैं उनसे कभी कहूँ अच्छा बुखारी पढ़ी सिस्टर आपने, मुस्लिम, सियासत्ता, वो क्या होता है? कुछ नहीं पता, सिर्फ मेरे से सुना सवाल, दूसरे किसी दर्स में गए उधर से सुना, तीसरी क्लास में गए। हमारा आज ये दीन का सोर्स क्या है? किलो कान, सुनी बात इसकी उधर उधर। कभी भी घर ऐसे नहीं बनते, पहले बुनियादें कायम होती हैं फिर उसके ऊपर घर बनते हैं। ये जो इधर से उधर हम भटकते हैं ना, हमें कुछ नहीं मिलेगा एंड पे, निरई कन्फ्यूजन होगी। एक जगह जम के अपने दिल को मजबूत करें, मट्टी देखें कौन सी अच्छी है, जगह कौन सी है, फिर आप जम के काम करें। नाम अपने शौहर हर रोज़ बदलते हैं, ना हम अपने बच्चे कभी बदलते हैं और ना अपने माँ बाप बदलते हैं। दीन के साथ नस्बतें बदल के इधर से उधर भटकने वालों का नसीब, याद रखिए, सिर्फ भटकना रह जाता है, कोई उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता और आपका खुद अपना कॉन्फिडेंस नहीं रहता। हफ्ते के 7 दिन आप 7 जगहों पे जाएं बाजार, आपकी माँ बाप आपके घर वाले कहेंगे माशाल्लाह बड़ी नेक हो गई है, हर रोज़ इधर से उधर जाती है। आपके पास कच्चा और पक्का है, जिधर से आपने आज का सुना उधर से आप कल का नहीं सुनेंगे, जिधर कल के उधर आपने पिछला नहीं सुना था परसों, जिधर जाना एक जगह होके बैठिए। मैं ये नहीं कहती कि आप इधर आ रहे हैं तो कहीं ना जाएँ, आप इसको छोड़ के कहीं ना जाएँ, इसके साथ जिधर मर्जी जाएँ, ये है असूल। अल्लाह से दुआ है कि हमें मजबूत दीन का इल्म लेने वाला बना दे। संजीदा होते ही नहीं हम, क्योंकि मज़ा बहुत आता है ना, हर रोज़ एक जगह आए तो बोरिंग भी तो होने लगता है ना, फिर पाबंदियाँ लग जाती हैं, फिर स्टूडेंट बनेंगे तो बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ, तो फिर आज तक आप देखिए पाबंदियों से ही तो हमारे बच्चे कॉलेज से यूनिवर्सिटीज़ में पहुँचे हैं। कभी कोई यूनिवर्सिटी आपके बच्चे को दाखिला देती है जिसने कॉलेज ना किया हो? तो दुनिया में कामयाबी के जो असूल हैं वही दीन में कामयाबी के असूल हैं।